विश्वास है। नीचे किसी ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? महर्षि जी कहते हैं वेद में जो अनेक नहीं मानते। उत्तर महर्षि जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं ये नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो यहाँ ऊपर देखो, सबसे यहीं पर ये ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 का सूक्त है, ये ऋग्वेद का 10 मंडल सूक्त, 10 मंडल का, ये ऋग्वेद का, ये यजुर्वेद का और ये ऋग्वेद का। इन सभी में आप पर शब्दार्थ कर रहे हैं, जैसे ब्रह्म बोल रहा, जैसे गीता बोल रहा काल, ऐसे ब्रह्म बोल रहा। यहाँ देखो इसी में अपने करकमलों से महर्षि जी लिख रहे हैं, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि, कौन ईश्वर, ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, मैं ईश्वर सबसे पूर्व विद्वान सब जगत का पति हूँ, मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ, मुझे ही सबका जीव जैसे पिता को संतान पुकारते वैसे पुकारे, मैं सबको सुख देने हारा जगत के लिए नाना प्रकार के भोजन विभाग पालन के लिए करता हूँ। आगे देखो ब्रह्म बोल रहा है, मैं ऐश्वर्य परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सम्मान सब जगत का प्रकाशक हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, मैं ही जगत का रूप धन का निर्माता हूँ, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो, मैं तुमको मेरी मित्र तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। फिर हे मनुष्यो, मैं सत भाषण रूप सतुति करने वाला मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि, देखो ऊपर देखो ये कै नंबर प्रश्न है, ये है 187 और 88 पर देखो 188 धन को देता हूँ, मैं ब्रह्म मैं काल। इन्होंने क्या कर दिया कि मैं, ये ब्रह्म बोल रहा, मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने वाला, अर्थात मैं वेद बोलने वाला हूँ, मैं वेद बोलने वाला और मुझको वह वेद यथावत कहता है, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूँ, मैं सतपुरुष का प्रेरक है, उस पूर्ण परमात्मा की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ, सतपुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है, यानी अपने 21 ब्रह्मंड के बारे में कह रहा हूँ, उस सब के कार्य को का बनाने और धारण करने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर किसी को यानी और देवताओं को मेरे से स्थान में मत मानो, मत पूजो, मत जानो। और देखो इसमें कमाल कर दिया, ये यजुर्वेद का मंत्र है छठा, क्या लिखा है, ये गीता, यही वेद बोलने वाला काल ज्योत निरंजन ब्रह्म कहता है, हे मनुष्यो, जो सृष्टि से पूर्व, ओए होए, जो सृष्टि से पहले आदि पुरुष सबसे पहले का भगवान और सूर्य आदि तेज वाले लोगों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था और है और रहेगा, उस वह पृथ्वी से लेकर यानी नीचे से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सतलोक तक सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है, उस सुख स्वरूप परमात्मा की भी भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग करो। ये काल ब्रह्म कह रहा है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ और तुम भी उसकी भक्ति करो। ये दो तो हो गए ना, एक तो ब्रह्म को ये भगवान बोलो तो वेद बोल रहा, और दूसरा जो है वो दूसरे भगवान की तरफ कहता है कि जैसे उनकी भक्ति मैं करूं ऐसे तुम भी करो। और इसी का प्रमाण आपने देखा था 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कि मैं भी उसके अधीन हूँ, और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा भी पूज्य देव वही है। और अब देखो ऋग्वेद में तीन भगवानों की इन्हीं के करकमलों द्वारा, अब दास के लिए ये समस्या होगी, मैं साची कहूँ और फिर इनका दर्द होगा, सब कहने के ऐसे क्यों कर कह दिया, मैं नहीं कह रहा ना मेरे दास में इतनी हिम्मत किसी की बुराई कर दूं, अदा में इतना विद्वान मैं किसी की विद्या काट दूं, दास तो ये कहना चाहता है कि ये आप ही की लेखनी आप ही के पेश कर रहा हूं, और फिर भी दास गलत कह रहा है तो मैं अपने अक्षमा याचना कर लूंगा, मेरे से गलत शब्द निकल भी गया होगा तो मैं तो एक बालक हूं आपका, और जिज्ञासु हूं अगर ऐसा गलत कह रहा हूं तो आप बताओ मुझे आप गलत कह रहे हो, और समाज को अच्छा ज्ञान दे दो कि वो गलत बता रहे हैं, आप फिर इनका सी सरनाद करके दिखाओ इसी के पैरेलल, जो दास बता रहा है कि इसमें ऐसा नहीं है। आज कोई बालक निक्षण बुका लेगा, कोई सपड़े लिखे बहन भाई बेटी शिक्षित है। अब देखो ऋग मंडल, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका भाषा वाच्य है। महर्षि दानंद सरस्वती अपने कर कमलों से इसमें दस मंडल में ले चलते हैं आपको। पहले ये देखिए ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, फोन नंबर इतना। और इसके मंडल नंबर 10 में चलते हैं, सूक्त नंबर 90 का, मंडल के सूक्त नंबर 90 में। अब देखो तीन भगवान नारे नारे आप ही बता रहे हैं, अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा सूक्त नंबर 90, ऊपर मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90। और प्रथम ही मंत्र में, ये प्रथम मंत्र है, सहरसा सहसर शीरसा हजार शरवाला सहसर अक्षय हजार आंखों वाला, देख सहसर शीरसा पुरुष है हजार भुजा वाला भगवान, यो काल है ज्योत निरंजन विराट। और सहसर अक्षय सहसर पात है सह भूमि विश्वत है वृत्वा अति तिष्ठत है दशा उंगलम पुरुष माने ये परमेश्वर। ये सहरसा शीरसा माने हजार भुजा वाला भगवान, ये लिखना था। हजार भुजा वाला भगवान अभी आपने गीता में देखा, वो काल है ज्योत निरंजन है परमेश्वर, संसार के सिरों वाला नहीं सहसर सिर वाला हजार सिर वाला, ये काल की तरफ संकेत है ब्रह्म की तरफ। आगे देखो आंखों वाला है, और वह है संसार भर के पैरों वाला है, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके दस इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रमांत करके स्थित है। इसका अर्थ तो कुछ और ही आप देखोगे गहरी उसमें परिभाषा प्रभु, फिर भी नहीं के आधार पे चलेंगे। ये तो एक नंबर के भगवान की महिमा ब्रह्म की। अब परब्रह्म की देखो, ये दूसरे श्लोक में के जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष है, यानी सेकंड नंबर के भगवान यानी परब्रह्म की तरफ संकेत है ही है। और वो अमृता अर्थात मोक्ष का स्वामी है, ये भी कुछ मोक्ष देता है, जैसे आपको बताना इनसे तो ज्यादा सथाई है पर ये भी सही मोक्ष नहीं है, स्वामी है। और जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है, आगे देखो। और तीसरे में क्या बताया है, एतावान यानी इस दूसरे नंबर के भगवान की अस्य इस पुरुष की यानी इस परमात्मा की जगत आदि विभूति है, इतनी ही इस परमात्मा की तो सतीची है। और वह पुरुष यानी वह और वह पुरुष वह परमेश्वर तो वेद बोलने वाला कह रहा है, वो परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है, ओए होए वो तो इससे भी बड़ा है, आदि आदि देख लो। और आगे देखो इसमें ये चौथा चौथा है तीनों पाद वाला अविनाशी यह परमात्मा ऊपर विराजमान होता है, ऊपर रहता है, वो तो ऊपर बैठा सतलोक में अपने कर्मों से निख रहे हैं, विराजमान होता है कि तो बैठेगा जाकर, आकार है उसका, ये आप देख लो, दास नहीं कह रहा, विराजमान होता है वो, बैठता वहां जाकर अपने ऊपर के लोक में। और इस का एक पैर ये उसके अंश है ऊपर और नीचे, और वह प्रभु सर्वत्र व्यापक है, देखो वहां प्रगट होता है, वहां आकार में बैठा है। फिर देखो तीन पाद वाला, अब क्या बताया कि इसका ऊपर का अंश समझो एक अंग है, नीचे का दूसरा, और एक इसका अंग जो ऊपर के जीव प्राणी, ऐसे तीन अंग समझो भगवान के परमात्मा के अधीन है। तीन पाद वाला अविनाशी यह परमात्मा पुरुष माने भगवान ऊपर विराजमान होता है, सतलोक में बैठा ये ऊपर। आगे देखो इसका एक पैर पाद रूप जगत और तो फिर यह प्रगट यहाँ प्रगट होता है, वो फिर यहाँ प्रगट होता है। आगे देखो और वह प्रभु वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है, वह खाने और न खाने वाले, ओए होए खाने लोग काल तो खाता है 1,00,000 प्राणियों को, और यो परब्रह्म खाता नहीं, इन दोनों से भी अर्थात ये तो अर्थात ही न कर दिया, खाने सने अनसने, ये देखो ऐसना और सने अनसने, यानी खाने वाले से और न खाने वाले से, खाने और न खाने वाले के अधि माने अभी अधिक अधिव्यापक है, यानी उससे भी ऊपर है, उनसे भी तगड़ा है, इन दोनों भगवानों से। खाने वाला थी काल 1,00,000 जीव रोज खावे, मनुष्य गरीबदारी, और ये परब्रह्म खाता नहीं, फिर ये दोनों फिर भी नाशवान है, वो इनसे भी अधि माने ऊपर है, अभी ऊपर न्यारा अभी व्याप्त है, उनसे भी न्यारा रहता है, इनके ऊपर भी परमात्मा, इनके ऊपर भी व्याप्त है, इनका मालिक है। और इसमें कमाल कर दिया, पांचवें में देखो, ओए होए ए परमेश्वर, उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से प्रकाश प्रकाश में समरा समष्टि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वही परमात्मा सबकी रचना करता है। और देखो विराजय अधि विराट इस काल के ऊपर, विराट के ऊपर अध्यक्ष रूप में है, इस यानी काल का मालिक है, काल उसके अंतर्गत उसकी शरण में है, वो विराट भी के ऊपर उससे भी अध्यक्ष माने उसका मालिक है, उसका सुप्रीम बोस है, रूप में पुरुष है, वो भगवान है। वह पुरुष उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है। अच्छा देखो, विराट के पश्चात ओए होए इस काल के पश्चात भूमि उसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता है, यानी काल को भी वह उत्पन्न करता है और अन्य अन्य प्राणियों को भी वह उत्पन्न करता है, नाना शरीरों को उत्पन्न करता है। आपके सामने विराट के पश्चात, विराट के ऊपर यानी काल के ऊपर अध्यक्ष रूप में वो पुरुष वो भगवान है। तीसरे नंबर का ये खुद तो बोल ही रहा है और वो अपने को गुप्त रख के बता रहा है कि वो विराट है ना, वो काल उसके ऊपर भी ये परमात्मा यानी मेरे ऊपर भी यही परमेश्वर है। अब तीन परमात्मा ये महर्षि जी अपने करकमलों द्वारा स्वयं लिख रहे। और उधर कहते हैं नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा कि दो कई परमात्मा का प्रमाण। फिर यजुर्वेद देखो, अब ये लिंक हो जाता है थोड़ा सा आपस में, ये इतनी जटिल विद्या बन गई, सहते बिल्कुल सिंपल, पर ऐसे ही उलझ गई क्योंकि अभी सारे उलझे हुए सुलझाने के लिए 20 प्रमाण देने पड़ेंगे। यहाँ देखो, अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक और 40वें अध्याय का 1 श्लोक कति क्लियर करेगा। ये महर्षि दानंद सरस्वती का अपने ही करकमलों द्वारा इनका अनुवाद है महात्मा जी का। यहाँ देखो, ये कहाँ से प्रकाशक है, सार्वदेशिक देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 5वें अध्याय का 1 श्लोक देखो, इसमें एक तो ये प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर है, और जबकि स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब यहां इसके धीरे धीरे सारे प्रमाण साथ चलेंगे तब ये बात बनेगी। प्रथम 5वें अध्याय का ये 1 श्लोक देखो, अथ 5वां अध्याय और नीचे देखिएगा, प्रथम श्लोक है अग्ने तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। और जबकि इन्होंने जो प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का अनुवाद किया तो वहां इन्होंने 12 अर्थों शब्दों के अर्थ छोड़ दिए, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखो प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 15, मंत्र नंबर 15 देखिए यहाँ पे, ये 15 में क्या है शुरू में, अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, ऐसी सह शरीर है परमात्मा, सह शरीर है, वाचो विसर्जन देव वितो, ये 3-12 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। नीचे देखो, मैं यहाँ देखो, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है। या देखो इसमें कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है। परमात्मा सहस्री नहीं लिखा, क्या लिखा है? मैं सब जनों के सहित जिस जिस अर्थात पदार्थ के साकार लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मुसल, ये धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कोई विवरण नहीं होता, इनका अर्थ बहुत और बना हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर क्योंकि अग्ने का अर्थ ये स्वयं करते हैं, 17वें में देखो अग्ने माने परमेश्वर, 18वें में देखो अग्ने माने परमेश्वर, और इन्हीं की व्याख्या के आधार पर सैकड़ों स्थान पर आपको दिखाऊंगा परमेश्वर अग्ने माने परमेश्वर। यहाँ इन्होंने क्या लिखा देखिएगा, अग्ने तनुरसी, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो, यानी ब्रह्म बोल रहा है, काल अपने बारे में कह रहा है कि मैं जो हवि अग्ने, अग्ने माने या ईश्वर लिख देते तो सीधा बन जाता अग्ने, और देखो तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा, स शरीर है परम ईश्वर, स शरीर है, ये सीधा अर्थ बन जाता है। इसमें बालक तो बालक होना, तो आठवीं क्लास का संस्कृत जानने वाला वो भी इसको सरलात कर सकता है, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सर्वव्यापक परमात्मा, सबका पालन करता, उस सर्व पालन करता, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीरसी माने है, वो दो बार लिख दिया इकट्ठा। और ये स्वयं ही 35वें श्लोक में स्वयं स्वीकार करते हैं कि सोम माने परमात्मा जगदीश्वर। ये देखो यही 5वें अध्याय का ऊपर देखो, 5वां अध्याय 5वां अध्याय, और यहाँ लाओ ये 35वें में खुद कहते हैं सोम, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और इसको सोमस्य कर दें यानी ईश्वर का, जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। देखियो ये फिर देखो पहला अध्याय, 5वें अध्याय का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक फिर देखो। अब आसानी से आप कर सकते हैं, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इसने। देखियो अग्ने तनुरसी परमेश्वर स शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सर्वव्यापक, उस सर्वव्यापक परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सत पुरुष का, सोम माने सदा रहने वाला अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अच्छा यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे ब्रह्म बोलता है हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि का तो शरीर बताओ भगवान, ये महाराज जी स्वामी जी अग्नि के शरीर के समान है, चलो उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। ये तो ब्रह्म बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वेद बोलने वाला। और फिर 32वें श्लोक में के बतावा है, यही 5वें अध्याय के में, कि हे जगदीश्वर, यानी उस पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हे जगदीश्वर आप, ये देखो 32वां श्लोक, उसका नाम भी लिखा कबीर, आप ही पाप कर्म काटने वाले हो। यहाँ देखो 5वां अध्याय 5वां अध्याय और 32वां मंत्र है, उसी गसी, नाम भी बताओ भगवान, वेद बोलने वाला बता रहा है, उसी गसी जो परम शांतिदायक वास्तव में ऐसा बनता, फिर भी इन्हीं के शब्दों में दिखाऊंगा, कबीर अंगारी असी, उसका नाम कबीर लिखा है। अब जैसे इस यजुर्वेद का ये हटा दे आप, मन रे हटा दे और यहाँ दो बिंदी ला दे, तो फिर भी यजु लिखोगे ना तो भी ये वेद लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है, चाहे बेशक अकेला यजु भी लिखा होगा तो भी यजु इसका संकेत इस पूर्व पवित्र पुस्तक की तरफ ही होगा। जो बहन भाई संस्कृत जानते हैं उनको खूब ज्ञान हो जाएगा, अरे तो बिना संस्कृत वाले भी समझ जाएंगे दास की परमात्मा की ऐसी कृपा दास पर। अंगारी असी बम्बारी इसी, देखो इन्हीं के शब्दों में, हे जगदीश्वर यानी ब्रह्म तो बोल रहा है काल, वहां तक कहता मैं, अरिब दूसरे भगवान की तरफ संकेत है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान है, अंगारी माने पाप कर्म काटने वाले लिखना था, कोई बात नहीं, खोटे चरण वालों के शत्रु, हम कहते अंगारी माने पापों के शत्रु दुश्मन हो, आप पाप कर्म खत्म कर देते हो, और कबीर वह कबीर अंगारी असी, वह कबीर परमात्मा है, कबीर है, कबीर असी माने यहाँ लिख रहा था कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर कबीर साहेब है, बस कोई बात नहीं, एकांत प्रजय है। आगे देखो बंधनों के शत्रु बंधन काट। अब देखो बंधन काटने वाले पापों का विनाश कर दे, कर्मों का बंधन कर्म दंड काट दे। बंधन काटने वाले कर्मों के बंधन में जीव बंधा हुआ है, बंधनों के शत्रु यानी हम उसके बंदी छोड़ कहते हैं। तारा आदि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं आदि आदि, प्रशंसीय सेवायुक्त स्वयं शुद्ध हैं और सब को शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाशमान है। पदार्थों के को अति सूक्ष्म पवित्र सभा के कल्याण में करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हरने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम द्रव्य को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और दुख सुख को सहन करने कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और रत धामा। आप सतलोक में रहते हो, रत धामा सत धाम, सत धाम कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो या सनातन परम धाम कहो, सतलोक युक्त वहाँ रहते हो। सतलोक युक्त है, आप सतलोक में रहते हो। आगे आओ, स्वर ज्योति है और गुणों, स्वर ज्योति अंतरिक्ष को प्रकाश यानी स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित हो और सतलोक में रहते हो। चलो, प्रकाश करने वाले और रित धामा सतलोक, सतलोक में रहते हो, सतलोक धाम युक्त है। वैसे ही उत्तम गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य हो, जैसे हम लोग जानते हैं। काल कह रहा है तुम ही पूजा के योग्य हो और नहीं है। अब एक श्लोक और बस थोड़ा सा, प्यारी आत्माओं ये अपना भाग उदय हो रहा है जो आपने को ये रहस्य परमात्मा ने कबीर साहब ने इस दास के ऊपर बुद्धि तुच्छ बुद्धि के जीव के ऊपर मेर बख्श दी। ये जो टेब वेद बुला दे ये वो परमात्मा कबीर साहब। देखो ये 40वां अध्याय का यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय है अंतिम, और उसका अंतिम श्लोक लास्ट कति क्लियर कर दिया अपने कर कमलों से महापुरुष ने। 44वां अध्याय इसमें 17वां मंत्र देखे, 17वां यहाँ देखो। हे मनुष्यो, कौन बोला है? ब्रह्म फिर बोले काल। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, ये तो अपना बता दिया। फिर बताया कि जो वह प्राण व वायुमंडल में यानी ऊपर सतलोक में रित धाम में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है। ओए है, कोई अपूर्ण भी है तभी पूर्ण हुआ, दो तो यही हो गए। अपूर्ण है तो पूर्ण लिखा, एक भगवान नीचे का है एक उस तो ऊपर का, दो हो गए ना। नहीं तो पूर्ण शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान एक ही होता थे पूर्ण परमात्मा। वह पूर्ण परमात्मा, फिर देखो मंडल में जो पूर्ण परमात्मा है वह परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है ऊपर सतलोक में रहता है। और फिर आप देखो अहम माने मैं, वैसे लिखना था मैं ब्रह्म, मैं काल। खम्भ माने स्वर्ग भी होता है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। खम्भ आकाश के तुल्य, ब्रह्म सबके गुण कर्म करके स्वरूप करके अधिक हूँ, सबका रक्षक जो मैं। ये कोई अर्थ है नहीं सबका रक्षक, ओम शब्द लिखा बस, सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। एक ही ओम लिखा ऊपर केवल, बस ओम खम ब्रह्म। ये लिखना अहम, यहाँ लिखना था सो अहम। असौ माने हम दो, ये तो असी माने एक, असौ माने दो का विरोध होता है। ये असौ जाने दो भगवान है, असौ दो परमात्मा, बिल्कुल सीधा सारत होता है। तो अब देखो दो भगवान स्वयं महर्षि जी अपने कर कमलों से, और तीन बतावे, और फिर ये बता रहे हैं कि नहीं वेद में एक ही है, दूसरा ऐसा वेद में कहीं लिखा कि जहाँ तीन परमात्माओं का बोध अन्य भगवानों का बोध होता हो। उनके फिर दोबारा विचार देख लो ताकि ये सामने आपके सामने आ जाए, फिर भूल लागी होगी। इसी सत्यार प्रकाश के 186 नंबर पृष्ठ पे ये है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम के सरगंज अजमेर से प्रकाशित। अब इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, इसलिए ये थोड़े से, अब ये थोड़ा सा कष्ट होगा आपको एक दो बार अच्छी तरह सुनने का। ये सप्तम संवाद जो प्रारंभ होता है फिर वहीं से देखिए। महर्षि जी से पूछा कि वेद में ईश्वर एक है अनेक, वेद में प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक है, इन बातों को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर महर्षि जी का, नहीं, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये सोच में ऋषि जी की है और वेद सही है, वेद गलत नहीं है, वेद बिल्कुल सही है, और ये इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। अब देखो आपके साथ, अब कारण क्या बना, अब आपके सामने अब ये है कि जिन जिन महापुरुषों ने, जो महर्षि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित है, उन्होंने केवल सत्यार प्रकाश पढ़े, और इन्होंने जो टिप्पणी दी उसके आधार पर चलते रहे, वेद नहीं देखे। नहीं तो इस वेद ने 124 वर्ष हो गए छपे ने, और अभी तक इसमें ढेर सारी त्रुटियां, अक्षरों की त्रुटियां, अक्षर छोड़ रखे हैं, उसमें कोई सरलार्थ नहीं है, सैकड़ों अक्षर है ऐसे, वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, लोग नहीं कहेंगे, केवल निंदा करे इसकी, त्रुटि त्रुटि ढूंढ रहा है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि वेद क्या कहते हैं, और वेदों को सत मानने वाले महापुरुषों की आपके सामने जो यथार्थ आया, ये आप स्वयं फैसला करें अब सच्चाई कहां है। बोलो सतगुरुदेव की जय। जय श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, ससाहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नम स्वीकार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्यु तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल वैभंज नाम, निर्लेपम निज निरगुण अकल अनुपेशो न दुनाम, सोहम सुरति समापताम, सकल समाना नीरत लय उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम, बेपरव था है वार पार नहीं मद तुम ग्रीब, जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता न करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गण नायक देवन देवा चरण कमल लोला, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता, हृदय सिद्ध दाता सोई अवगत गुण युति काम, सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्याव, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे, पूज आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अगार जावे, शेष 88 उतर भव जल पारा, कट है यम की पोसी 33 कोटि अदार जावे, शेष 88 उतर भव जल पारा, कट है यम की पोसी सत्साहे, कर जोरों विनती करो धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतर, अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपोत हूँ बहुर पिता कुल, मैं अपराधी जन्म का
नकसक बरे विकारे तुम दाता दुख भंजना मेरी करो जय। अब कह सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो चरणों ऊपर शीश धरो कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो भावे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको पूता तेरे दरे बार का मोतिया मेरा नाम है गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं जो दे वो सुख।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे कलयुग के अंदर ये शुभ समागम हो रहे हैं जिन पुण्यात्माओं को प्रभु के समागम माने का सु अवसर प्राप्त हो रहा है धन भाग है वो। मानव शरीर का एकमात्र यदि हमने उपयोग लाभ लेना है उपयोग करना है तो केवल प्रभु प्राप्ति परमात्मा का भजन आत्म कल्याण करवाना होता है और इसका ज्ञान हमें सत्संग से होता है। अब सत्संग में ये प्राणी नहीं आ पाता तो इसका दुर्भाग्य होता है। इस पवित्र नगर नरेला में ये परमात्मा की अमर कथा 11 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई आज इसका द्वितीय दिन है। जो पुण्यात्मा इसके अंदर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर विशेष रजा है परमेश्वर की क्योंकि उसकी कृपा बिना यह प्राणी दरा भी नहीं सकता। अब आप देख रहे हो कितने प्राणी हैं कितने जीव कितने मानुष हैं जनसंख्या है इस नगर नरेला की और कितनी पुण्यात्मा यहां आ पा रही हैं। इससे वही वाणी से दोती है संतों की के सकल पदार्थ हैं जगमाही पर कर्म ही न नरपाव नहीं। अब देखो ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसांस में नाम जपो वही व्यर्था श्वास मत खो और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत ये रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं अपनी संपत्ति मानते हैं इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे लेकिन वो इनकी थी नहीं वो चले गए संपत्ति ज्यो की त्यो यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो नादान जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान ली आपने ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो
चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो।
खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा, कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, शरीर को त्याग के, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले, इस मध्यानगर इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और दो नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते हैं। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी ही भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भगत और अभगत में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कह दे भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कह कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर ले तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खेचा तानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना, जैसे आपको कोई गाली दे देता कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टियो वर रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आके, क्रोध में आके किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग था, किसी की गलत धारणा से मां को कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए, दो जब होगी, जब आप उल्टी दे दोगे, उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे, तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो वा रह जाए रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है भाई लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि आथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जावे किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा बोले नहीं, वो इन्हों सोचेगा तेरे तो डर गया,
तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उसे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते वो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता, संत होते ही। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं, तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दुखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे अब रिश्वत लेते हैं या दो नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ के बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगे आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जो जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था, वो पाप कर्म तो ज्यों के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपनाया था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा एक जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कितना शर पटक ले। उसे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से, तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु पर छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप दो चार महीने के बाद फिर आते हो, जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रसन्न करते हैं आप लोग, लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना गणी कमाई होए, पैसे गने आ जावे, तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज को चाहो तुम धन गना आ गया थोड़ा, फिर तो न सोचोगे आज सिमरन कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा, आपने दो नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने चार पांच महीने पीछे बताया दास गुरु जी का को आके, कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया, और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका गना है, क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया, तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूँ विश्वास में, इतना विश्वास रखना कि जैसे एक समय की बात है, एक एक किसी नगरी में अपना दो भक्त रहते थे। एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केस भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष से उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा डेढ़ घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, चर्चा करते प्रभु की, चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस नपुंसक क्षेत्र में आपके दो परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत वो दोनों भक्त नहीं है, भगत तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान आज भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रहेगा शायद। कहने लगे जी नहीं नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत मेरी बात नहीं अर्थ आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस भाव से कह रहे हो। तब देव प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते लेट देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना, फिर आप निर्णय करना कौन संत है कौन असंत है कौन भक्त है कौन है भक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे, उसके पास जा पहुंचा तो नमस्कार हुआ, और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत आज इतनी देर कैसे लगा दी आपने, आपके बिना तो मैं तड़फ रहा था, आप आते थे घंटा दो घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, अब तो आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी और आप ही की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या तक क्या कहानी बनगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे। अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसी है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे, मैंने सोचा इसको देखकर ही चलूं ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने ऐसा, हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गपोड़ नहीं पेला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब उस देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था। मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डंगर है, निरा। जिसने भगवान पे विश्वास नहीं फिर किस लिए साधना कर रहा नादान तू। उठ कर चला गया, बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं। जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो। जब अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका। उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था, उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो। मैं तो यही चिंता कर रहा था, और आपकी राह जो रहा था मुझे तो बेचैनी होगी थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी आपके, सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भी क्या बताऊं, बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा पच्चा नहीं, बताऊंगा जरूर, हक बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था, और मैंने सोचा देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। अब क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। भाई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको। तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में, गए आप हाथी की बात करो। ये क्या दर्द हुआ, सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन्य तेरे मात पिता ने, धन्य तेरे मात पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम दिया तो क्या हुआ, जमन में नहीं विश्वास है। फिर के जाप करा जो परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता है वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, अरुण में जवार पैदा कर दी मालिक ने, बड़े बराए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता तो परमात्मा क्या हुआ। तो आप अपने तो भी गया गुजरा कर उसने कौन याद करे। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु का विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके, और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है, सोचनताएं हैं, वह लड़की शानी होगी, गाणी पड़ेगी, एक नौकरी तो काम नहीं चलता, पर हम कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगे जी मेरा एक भाई है वो थोड़ा विकलांग है, और मैं और वो मेरा भाई दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी बेबे इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा। फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आगे आगे लेने आए थे, फिर वो अग्रम मग्रम कहने लगी मारी बेटी फिर ठीक से कर लो तो थोड़ा मनमान रहा था आपका, कर लीजिए। अब 6 महीने के बाद 7-8 हजार का नुकसान हो गया, कि बकरी बकरी हुई कि नहीं उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक क्या सारा उधार में नुकसान हो गया 7 हजार का। वैसे तो नुकसान नहीं था क्योंकि वो उधार में पड़ा ही है, नुकसान तो था ही नहीं। फिर भी हमने जो, तो वो कहने लगी, मैं बोला भाई कोई बात नहीं, परमात्मा करे सो ठीक ही करे। अगर जी 100 की 100 बात है, बिल्कुल आपकी 100% बात है, जो ये करे वो ठीक करे, नुकसान हो बेशक हो गया तो हो गया, ये हमारे फायदे में हुआ है, मतलब इतना दृढ़ विश्वास उस बहन के, ऐसा होना चाहिए। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस प्रस्तिस बैठे जगदीश। जो परमात्मा की राजी में रजा में राजी रहे उसको भगवान मिला करे। इतना विश्वास देख कर उस लड़की का मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने तन्यों सोची थी हमारे इसे तो मन है, सो सुख हो जाए उसके बाद पहले उसको काफी लाभ, और जैसे शरीर में कष्ट था, बच्चा में तकलीफ थी, वो सारा लाभ हो गया था। और न्यू आई थी मन में, क्योंकि जब तक हमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान पूरा ना होता तो एक काम ना सरहता हम डीले उठ छोड़ दें। हम ये सोच लेते हैं कोई लाभ नहीं होता, हो सके। मैंने न्यू सोची ये परमात्मा कदे ये लड़की बेचारी अपनी दिशा ना बदल ले 5-7 हजार के नुकसान में सोच के, पर उसके मतलब और दृढ़ विश्वास मिला। और उसका क्या फल मिला उसको, वो कहने लगी जी मैंने एक जगह कोई प्लॉट के लिए अप्लाई करना था, किसी शहर में अप्लाई कर दो, वहां पे देख ले बंदी छोड़ का नाम ले। वो उसका प्लॉट निकल गया, प्लॉट निकल गया तो उसने उसके ऊपर भी फिर किसी ने जाल साजी कर ली थी, वो भी गया होता फिर एकदम मालिक ने दया करी, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा तो प्लॉट रीसेल होने वाला था, वो भी कृपा बख्शी मालिक ने। फिर जब उसने संकल्प किया कि अगर ये प्लॉट मेरा निकल आवे तो एक खुला पाठ कराऊं, मैं कभी ये तो तेरी अपनी भावना है, मालिक ने कुछ लेना देना नहीं होता, आप दान करोगे आप ही को मिलेगा, परमात्मा लेता नहीं देता ही देता है। तो उसको उसका प्लॉट निकला, फिर उस पर कुछ ऐसी दिक्कत होगी वो भी फटाफट सुलट गई, और फिर उसने सेल कर दिया, वो काफी बेनिफिट हुआ उसमें, इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। और अब उसने खुला पाठ जींद में रखवा रखा है, 16 से 19 को होगा। अब उसको बता बेटी अगर तू उस दिन आप डीले उठ छोड़ जाती है ना, कि लाभ हुआ 7 हजार का नुकसान हो गया, तो सारी उम्र त्रिज्ञों की नो दुर्गति रहो और भगवान दूर हो जाता, भक्ति में भाव नहीं परमात्मा से दूर हो जाती। और तेरे उस दृढ़ विश्वास ने देख कर जो आपने ये विचार जो कहे, मैं गदगद हो गया था उस दिन के, कितनी अच्छी बात की इस लड़की ने, जरा सा भी मन में शिकन नहीं आई, और आज तेरे कितने ठाठ कर दिए। जब जो अब इस पाठ के ऊपर कितना पैसा लगा है, इसमें पैसा लगावेगी 5 दिन 4 दिन में, तो उसका बेनिफिट और कितना होया होगा हिसाब लगाना। और उसको तो मेरे ख्याल सारे जीवन में नहीं कमा सका थी 2 नंबर के करके, ऐसा विश्वास हमने इस कबीर परमेश्वर रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस मार्ग से परमात्मा और कैसे रजा बख्श दे, छप्पर पाड़ के दिया करे भगवान, यूनो ऐसे देता है। तो ऐसे अब उस बहन की उस परिवार की बहन नहीं, पति भी उसका जो कहते हो उससे भी 21 श्रद्धा के साथ लगा हुआ है। अब उस परिवार में कितनी श्रद्धा प्रभु की बड़ी होगी और ज्यादा, और कितना भाव बनेगा, दिन रात याद आओ मालिक। तो ये वो कबीर परमात्मा है कि यदि हम इसके हर नियम पर खरे उतर जाएंगे तो फिर देखियो ये है वो भगवान जो सदा सुखदाई सदा सहाई परमेश्वर, कर्मों के बंधन को काटने वाला, सतलोक ले जाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, आयु जीव की उम्र बढ़ाने वाला और सतलोक में पहुंचाने वाला, ये कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को और सत्संग को एक नंबर पर रखना पड़ेगा इस मार्ग में यदि सफल होना है परमात्मा के में। हम थोड़े से चिंतित ज्यादा हो जाते हैं, आसपास सत्संग होता है और सोचते रहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। एक भगत जी कह रहा था जी यह बात तो मेरा पक्की अक्कल लाग गई कि आसपास सत्संग हो तो मैं डटू नहीं आया करूंगा, चाहे 100 काम छोड़ने पड़े। एक बार क्या था कि जींद खुला समागम हो रहा 5 दिन का, पहले थोड़ी संगत थी 10-15 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने सोचा भी पहले हम 7 दिन का भी करते थे, कभी 5 दिन का भी करते थे, 7 दिन का सत्संग था। उसने सोचा और छुट्टी ले ली, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, नौकरी सरकारी नौकर था। ने बोला जी ऐसी स्थिति थी कि इलेक्शनों का कोई टाइम था और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वो छुट्टी भी मिल गई, रजा हुई मालिक की ऐसी कृपा बख्शी। और फिर भी डीले उठ छोड़ गया, सोचा पीछे से चलूंगा लास्ट के 3 दिन में, इतने पहले क्या करूंगा जाके। वो कहने लगा जी मेरे मन में इतनी आई थी, इतने में एक रिश्तेदार आ गया, जिस दिन मैंने चलना था उस दिन नो सोच ली फिर चलूंगा फिर चलूंगा दो चार दो तीन दो या तीन दिन पहले चार दिन पहले चल पड़ूंगा। अभी क्या करूंगा, इतने में एक रिश्तेदार आ गया और बहुत निजी, वो कहने लगा मैंने एक भैंस मोल लेनी है और भैंस दिला। अब उसके साथ हो लिया, पहले तो सारे गांव में घूमया, फिर दूसरे गांव में गया, फिर किसी डेयरी में गया, वहां भी बात नहीं बनी, फिर 100 किलोमीटर पहुंचे, एक सीन बताई वहां एक जोटी में देखा था भैंस बहुत बढ़िया, वहां पहुंच गए। 7 दिन में धक्के खाके न्यो के न्यो आगे, ना तो वह भैंस मिली और सत्संग सुन पाया ना, और कम से कम 1500 रुपये घर तक ला दिए, और वहां जो है ना जाने कित रुकना पड़ा, किधर स्टेशन पर रात काटी, किधर किसी के अजनबी का रुकांगे तो ऐसे स्थान पर हो क्या करे जहां पर भैंस पे पशु बंद रहे थे वहां पड़े सारी रात, मच्छर नारे खावा, टाइम पर टूक मिला ना। जब मेरी याद आई है परमात्मा देख के गलती बनी मेरे थे, अगर मैं उस पहले दिन जाना था उस दिन निकल जाता, अगर उसी दिन चला जाता जैसे आज समागम प्रारंभ होना था और उससे पहले दिन आने का फर्ज बना था, नहीं उस दिन तो सुबह सुबह चलना था, उन्होंने बोला जी श्याम ना आ गया, सुबह मटाल मटोल कर गया, श्याम ना आ बैठा बटे बहन का, वो तो भैंस तो बाद में भी दिलाई जा सके थी, पर यो मेरा जो है ना उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मालिक के काम को एक नंबर पे बाकी सेकंड नंबर पे। तो इस प्रकार ऐसे ही जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे प्रभु पे तो अपने आप इस मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे।